नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां जारी। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में पिछले 5 साल में भर्ती हुए कर्मचारियों के दस्तावेजों की जांच के लिए आंतरिक समिति बनाने के निर्देश दिए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने जनजाति क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए तेज गति से काम करने पर बल दिया। और राज्य के अधिकतर जिलों में लू का असर खत्म। कल से 9 जून तक अजमेर, जयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश के आसार। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए द्वारा नई सरकार गठन के संबंध में लगातार बैठकें की जा रही हैं। आज भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। श्री नड्डा के आवास पर हुई इस बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, मनसुख मांडविया सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। जनता दल यूनाइटेड के कई नेता भी दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे। कल नई दिल्ली में एनडीए गठबंधन में शामिल दलों के संसदीय दल की बैठक होने वाली है। इस बैठक में भाजपा, टीडीपी, जेडीयू, एलजेपीआर, शिवसेना, शिंदे गुट, जेडीएस और अन्य सहयोगी दलों के नवनिर्वाचित सांसदों के शामिल होने की उम्मीद है। इस बीच इंडिया गठबंधन के नेताओं की भी बैठकों का दौर जारी रहा। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बैनर्जी और पार्टी नेता डेरेक ओब्रायन ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की। आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत के साथ बैठक की। वहीं कांग्रेस ने 8 जून को पार्टी की कार्य समिति की बैठक भी बुलाई है। इस बीच निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता को तुरंत प्रभाव से हटा लिया है। लोकसभा सचिवालय ने 18वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित सांसदों के दिल्ली पहुंचने के मद्देनजर विशेष इंतजाम किए हैं। एक विज्ञप्ति में सचिवालय ने कहा कि सदस्यों के स्वागत और उनका निर्बाध पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। समय की बचत और पेपर रहित डिजिटल प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए नव निर्वाचित सदस्यों का पंजीकरण ऑनलाइन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के माध्यम से किया जाएगा। सचिवालय में नव निर्वाचित सदस्यों के लिए एसबीआई बैंक खाता खोलने, स्थायी पहचान पत्र और केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना का कार्ड जारी करने के लिए भी प्रबंध किए गए हैं। आज से 14 जून तक शनिवार और रविवार समेत रोजाना सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी। हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर मार्गदर्शक चौकियां बनाई गई हैं। इसके अलावा सदस्यों के अस्थायी रूप से रहने की व्यवस्था वेस्टर्न कोर्ट, एनेक्सी, हॉस्टल, राज्य और केंद्र शासित भवनों तथा अतिथि गृहों में की गई है। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में पिछले 5 साल में हुई भर्तियों के जरिए आए कर्मचारियों के दस्तावेजों की जांच के लिए सभी विभागों को आंतरिक समिति बनाने के निर्देश दिए हैं। कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव हेमंत गेरा ने सभी विभागों को आदेश जारी कर कहा है कि आंतरिक कमेटी ये जांच करे कि परीक्षा देने वाला तथा नौकरी करने वाला लोक सेवक एक ही व्यक्ति है। साथ ही भर्ती किए गए कर्मचारियों के शैक्षणिक पात्रता की दस्तावेज तथा आवेदन के समय प्रस्तुत आवेदन पत्र, फोटो, हस्ताक्षर की भलीभांति जांच की जाए। जांच में जिन कर्मचारियों की भर्ती के संदर्भ में सूचनाएं संदिग्ध हों, उनकी सूचना एसओजी को उपलब्ध कराई जाए। गौरतलब है कि पिछले सालों में हुई विभिन्न भर्तियों में डमी परीक्षार्थी और फर्जी डिग्री के जरिए नौकरी प्राप्त करने के विभिन्न मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार ने यह निर्णय किया है। देश में आगामी 1 जुलाई से 3 आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। उनमें समय और मांग के अनुसार नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसी के बारे में जागरूकता के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में नई श्रृंखला शुरू की जा रही है। इसमें हम श्रोताओं को इन कानूनों में किए गए नए प्रावधानों के बारे में हर रोज जानकारी देंगे। भारतीय न्याय संहिता 2023 में स्नैचिंग के बारे में प्रावधान जोड़े गए हैं। अब स्नैचिंग को धारा 304 के तहत एक अपराध के रूप में चिन्हित करते हुए 3 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यदि स्नैचिंग किसी समूह द्वारा की गई है तो ये छोटे संगठित अपराध के तहत भी आता है। स्नैचिंग के मामलों के लिए किए गए नए प्रावधानों से मोबाइल छीनने की घटनाओं में संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा, वित्तीय जानकारी और पासवर्ड की सुरक्षा के मद्देनजर छीनने के कृत्य को अपराध बनाकर संरक्षित किया गया है। ऐसी घटनाओं के दौरान होने वाले शारीरिक आघात झेलने की बात को भी कानून में स्थान दिया गया है। राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति के बेरोजगार युवाओं के लिए आगामी 1 जुलाई से विशेष कोचिंग योजना शुरू की जाएगी। 12 महीने चलने वाली इस योजना के तहत 80 बेरोजगार युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। इसके लिए कोचिंग देने वाले संस्थान कल तक आवेदन दे सकते हैं। ये संस्थान अंग्रेजी, कंप्यूटर बेसिक, अंग्रेजी टाइपिंग, सामान्य ज्ञान तथा अंग्रेजी और हिन्दी में स्टेनोग्राफी प्रशिक्षण दे सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य के जनजाति क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए तेज गति से प्रयास किए जाने का आह्वान किया है। श्री मिश्र आज राजभवन में जनजाति कल्याण के लिए संचालित योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। श्री मिश्र ने आदिवासी क्षेत्रों में खाली पदों को भरने के लिए सभी स्तरों पर गंभीर प्रयास किए जाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि जनजाति क्षेत्रों में मजबूत स्वास्थ्य तंत्र विकसित हो तथा सहज और सस्ता उपचार उपलब्ध कराना प्राथमिकता होना चाहिए। उन्होंने आदिवासी इलाकों में चिकित्सकों, पैरामेडिकल तथा शैक्षणिक और अशैक्षणिक खाली पदों को भरने के लिए प्राथमिकता से काम करने की अपील की। श्री मिश्र ने वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाने वाली उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की मंजूरी और भुगतान समय पर किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति आवेदन प्रक्रिया सहज और सरल बनाई जाए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर का 8वां दीक्षांत समारोह कल आयोजित होगा। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र करेंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य मनोज दीक्षित ने बताया कि इस दिन विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस समारोह भी मनाया जाएगा। दीक्षांत और स्थापना दिवस समारोह को भव्य बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। कुलपति ने बताया कि दीक्षांत समारोह में वर्ष 2021 की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए 1,26,880 विद्यार्थियों को उपाधियां दी जाएंगी। वहीं इसी वर्ष की परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त करने वाले 54 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक दिए जाएंगे। और अब मौसम। प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी जिलों में आज भी कहीं कहीं हल्की बारिश हुई है। हालांकि अभी भी कई जिलों में तेज गर्मी का असर है। राज्य में पिछले 4-5 दिन में हुई बारिश से ज्यादातर जिलों में लू का असर खत्म हो गया है और अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया जा रहा है। बीती रात ज्यादातर जिलों में न्यूनतम तापमान 25 से 30 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। चूरू, सवाईमाधोपुर और भीलवाड़ा में आज भी भीषण गर्मी रही। इस बीच मौसम विभाग ने कल से 9 जून तक अजमेर, जयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में दोपहर बाद मेघ गर्जन, आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होने तथा पारा 45 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज होने की संभावना है। बीकानेर के हार्दला बरसिंहसर के गैप एरिया में बजरी, सिलिका सैंड और बॉल क्ले के भंडारों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में नीलामी के लिए प्लॉट तैयार कर ऑक्शन की हरी झंडी दे दी है। खान सचिव आनंदी ने बताया कि बीकानेर के हार्दला बरसिंहसर का 272 वर्ग किलोमीटर और भानेका गांव तथा लोहिया के 319 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को एक अधिसूचना जारी कर अनारक्षित घोषित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पहले यह क्षेत्र आरक्षित होने के कारण प्लॉट्स का ऑक्शन नहीं हो पा रहा था। खनन प्लॉट्स की नीलामी के बाद अवैध खनन पर प्रभावी रोक लग सकेगी। इसके साथ ही बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ सहित आसपास के इलाकों में बजरी की सहज उपलब्धता संभव हो सकेगी। कोटा के डकनिया तालाब रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास पर 111 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत आएगी। स्टेशन के पुनर्विकास कार्य की प्रगति का निरीक्षण नियमित अंतराल पर डीआरएम सहित संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में कोटा मंडल रेल प्रबंधक मनीष तिवारी ने डकनिया स्टेशन पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने स्टेशन पर चल रहे पुनर्विकास कार्य की प्रगति का निरीक्षण कर आधारभूत संरचनाओं के विकास की कार्य योजना की जानकारी ली। डीआरएम ने रावथा रोड रेलवे स्टेशन यार्ड का भी निरीक्षण किया। उन्होंने डिपो में संरक्षा तथा सुरक्षा के सभी मानकों का प्राथमिकता से पालन करने के भी निर्देश दिए। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के नवा गांव में करंट लगने से एक लाइनमैन की मृत्यु हो गई। ये लाइनमैन बिजली पोल पर चढ़कर केबल ठीक कर रहा था। इसी दौरान करंट लगने से वो नीचे जमीन पर गिर गया। गंभीर हालत में उसे परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चूरू जिले की बीनासर ग्राम पंचायत में आज जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने जनसुनवाई की। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर मौके पर ही उनका निस्तारण करवाया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां जारी हैं। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में पिछले 5 साल में भर्ती हुए कर्मचारियों के दस्तावेजों की जांच के लिए आंतरिक समिति बनाने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने जनजाति क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए तेज गति से काम करने पर बल दिया है। और राज्य के अधिकतर जिलों में लू का असर खत्म हो गया है। कल से 9 जून तक अजमेर, जयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।